पृष्ठ संख्या 144, एकादश अध्याय, अनुभववाद, बर्कले। जॉर्ज बर्कले सन 1685 से 1753 ईस्वी। बर्कले, जॉर्ज बर्कले का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उनकी प्रतिभा असाधारण, प्रवृत्त धार्मिक और स्वभाव मधुर था। 25 वर्ष की आयु से ही वे अपनी दार्शनिक कृतियां प्रकाशित कराने लग गए थे। पहले वे डबलिन कॉलेज में अध्यापक हुए, फिर पादरी बन गए। बाद में लंदन जाकर विख्यात साहित्यिकों से उन्होंने घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया। उनकी दार्शनिक कृतियां भाषा की शैली और साहित्यिक सौंदर्य से भी पूर्ण है। उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और एक नवीन आदर्श समाज स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका गए। कैलिफोर्निया में बर्कले नामक नगर उनके नाम पर बसाया गया था। अमेरिका में सफल न होने के कारण वे आयरलैंड लौट आए और दक्षिण आयरलैंड के पादरी बने। साधारण सरल जीवन के प्रेमी होने के कारण उच्च पद मिलने पर भी वे नहीं गए। धर्म के प्रचार और रोगियों की सेवा में उनकी विशेष अभिरुचि थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे ऑक्सफोर्ड चले गए और वहीं एक दिन अपराह्न में चाय पीते समय उनका देहांत हो गया। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक रचनाएं हैं मानवीय ज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हाइल्स और फिलोनाउस के तीन संवाद या थ्री डायलॉग्स बिटवीन हाइलस एंड फिलोनोस, एल्सिफ्रोन या सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक या एल्सिफ्रोन आर द मिनट फिलोसफर, और सीरीज। जैसे स्पिनोजा ने अपना दर्शन डेकार्त की त्रुटियां सुधार कर प्रारंभ किया, वैसे ही बर्कले ने अपना दर्शन लॉक की भूले ठीक करके प्रारंभ किया। बर्कले का लक्ष्य धर्म और दर्शन का सामंजस्य करना था। लॉक की ज्ञान मीमांसा के कुछ सिद्धांत बर्कले ने स्वीकार किए। लॉक के दर्शन में जो बहुत से विरोध थे उनको बर्कले ने दूर किया। बर्कले भी लॉक के समान अनुभववादी हैं, किंतु लॉक का इंद्रिय अनुभववाद बर्कले में विज्ञान अनुभववाद बन गया। तत्वमीमांसा में बर्कले लाइबनित्ज के समान चैतन्यवादी हैं। बर्कले का मुख्य उद्देश्य जड़वाद का खंडन और विज्ञानवाद का मंडन है। पृष्ठ संख्या 145। बर्कले ने लॉक के अनुभववाद को स्वीकार किया। हमारे प्रत्यय और विज्ञान संवेदन या स्वसंवेदन द्वारा आते हैं। हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय विज्ञान ही है। विज्ञान आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आत्मा विज्ञानों का आश्रय है। विज्ञान सरल या मिश्र होते हैं। लॉक के ये सिद्धांत बर्कले को मान्य है। बर्कले के अनुसार लॉक ने अपने इंद्रिय अनुभववाद को उचित और पूर्ण रूप से नहीं समझा। इसी कारण उनके दर्शन में विरोध आ गए और वे जड़वाद, संदेहवाद तथा अनिश्वरवाद से पूर्णतया बच नहीं पाए। इन सब का मूल कारण उनका जड़वाद है, अर्थात बाह्य जड़ पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता मानना। जब लॉक इस बात को मानते हैं कि हमारे ज्ञान के एकमात्र विषय हमारे विज्ञान ही हैं, तब बाह्य पदार्थों की सत्ता कैसे स्वीकार की जा सकती है। लॉक यह भी कहते हैं कि जड़ द्रव्य अज्ञेय है, कि हमारा उनसे कोई साक्षात संबंध नहीं होता, कि हमें केवल गुणों का ही प्रत्यक्ष होता है, और साथ ही यह भी मानते हैं कि बाह्य प्रत्यक्ष द्वारा स्वतंत्र जड़ पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होता है। किंतु जब प्रत्यक्ष केवल विज्ञानों का ही होता है तो बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष कैसे होगा। इस कठिनाई से बचने के लिए लॉक कहते हैं कि बाह्य पदार्थ का अनुमान कर लिया जाता है। कैसे? उसके गुणों के कारण द्रव्य के मूल गुण संवेदनों के माध्यम से हमारी आत्मा में अपने प्रतिबिंब या प्रतिलिपि अंकित कर देते हैं। ये प्रतिबिंब ही विज्ञान हैं। हम इन प्रतिबिंबों को देखकर उस द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं जिस द्रव्य के मूल गुणों के ये प्रतिबिंब हैं। प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य का अनुमान हम उसके मूल गुणों के कारण करते हैं, मूल गुणों के प्रतिबिंबों के कारण। पहले तो कहा गया था कि हमारा साक्षात संपर्क द्रव्य से न होकर उसके गुणों से होता है। अब कहा जाता है कि वस्तुतः हमारा संपर्क मूल गुणों से भी नहीं होता, केवल उनके प्रतिबिंबों से होता है जो हमारे विज्ञान हैं। न तो हम द्रव्य को जानते हैं और न उसके मूल गुणों को। हम जानते हैं केवल अपने विज्ञानों को जो मूल गुणों के प्रतिबिंब हैं। यदि ऐसा है तो प्रश्न यह है कि बिंबों के ज्ञान के अभाव में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे विज्ञान प्रतिबिंब हैं, और कैसे हम इन प्रतिबिंबों को यथार्थ कहकर अपने ज्ञान को सत्य मान सकते हैं। यदि हम बिंब और प्रतिबिंब दोनों को देख सकते तो हम कह सकते थे कि अमुक प्रतिबिंब अमुक बिंब का है और ठीक आया है या नहीं। विज्ञान के ज्ञान के अभाव में हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते और न अपने विज्ञानों को यथार्थ या अयथार्थ कह सकते हैं। हमारे लिए तो केवल विज्ञान ही सत्य है। पृष्ठ संख्या 146। हम न तो अपने विचारों को प्रतिबिंब कह सकते हैं न मूल गुणों को बिंब। हम मूल गुणों को नहीं जान सकते और न उनके द्वारा बाह्य द्रव्य का अनुमान कर सकते हैं। जब जड़ द्रव्य और उसके मूल गुण दोनों हमारे प्रत्यक्ष के बाहर हैं तो द्रव्य और गुण के भेद का प्रश्न नहीं उठ सकता। इसी प्रकार मूल गुण और उपगुण का भेद भी अनुचित है। कहा गया है कि मूल गुण द्रव्य के वास्तविक धर्म हैं जो उसमें विद्यमान रहते हैं और जिनका कार्य इंद्रियों से संपर्क होने पर हमारी आत्मा में संवेदनों के माध्यम से अपने प्रतिबिंबों के रूप में विज्ञान उत्पन्न करने का है। इन मूल गुणों का दूसरा कार्य अपनी शक्ति से हमारी आत्मा में संवेदनों के रूप में उपगुण उत्पन्न करने का है। उपगुण संवेदन रूप है और आत्मा में रहते हैं। मूल गुण बाह्य पदार्थ में रहते हैं और आत्मा में केवल अपने प्रतिबिंब अंकित करते हैं। आकार, विस्तार, गति आदि मूल गुण हैं। रूप, रस, गंध आदि उपगुण हैं। बर्कले का तर्क है कि मूल गुण और उपगुण में कोई भेद नहीं। जैसे उपगुण आत्मा में रहते हैं, वैसे ही मूल गुण भी बाह्य पदार्थ में न रहकर आत्मा में ही रहते हैं। दोनों का अधिष्ठान आत्मा है, दोनों मानसिक धर्म है, दोनों संवेदन मात्र है, दोनों ही इंद्रियों द्वारा ग्राह्य है, दोनों आत्मा में उत्पन्न होते हैं, दोनों विज्ञान रूप हैं और दोनों की सत्ता आत्मा पर निर्भर है। शीत या उष्ण स्पर्श मानसिक है। एक ही वस्तु किसी को कम उष्ण और किसी को अधिक उष्ण लगती है। ज्वर में चीनी भी कड़वी लगती है। पीलिया के रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। इसी प्रकार तथाकथित मूल गुण भी दृष्टा पर निर्भर है। विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर वस्तुओं का आकार और विस्तार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। एक ही वस्तु दूर से देखने पर छोटी और पास से देखने पर बड़ी लगती है। एक ही वस्तु जो सामने से देखने पर गोलाकार लगती है, बगल से देखने पर अंडाकार प्रतीत होती है। पुनश्च मूल गुण और उपगुण सदा साथ रहते हैं। उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः सिद्ध है कि दोनों एक ही प्रकार के गुण हैं और आत्मा में रहते हैं। इनका भेद कल्पित और अनुचित है। इसलिए इन तथाकथित मूल गुणों को बाह्य पदार्थों का वास्तविक धर्म मानना और उनके आधार पर बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करना, दोनों बातें गलत हैं। लाख अपने सिद्धांतों को भूलकर ऐसा करते हैं। वे स्वयं धूल उछालते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वे देख नहीं सकते। बाह्य द्रव्यों की सत्ता के लिए लॉक ने एक प्रमाण यह भी दिया था कि यह अमूर्त विज्ञान अर्थात काल्पनिक सामान्य या जात विज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बलपल द्रव्य का ज्ञान करते हैं। पृष्ठ संख्या 147। जैसे हम विशेषों या व्यक्तियों के आधार पर सामान्य की कल्पना करते हैं, यथा विविध मनुष्यों को देखकर मनुष्यत्व की कल्पना करते हैं, वैसे ही विविध गुणों के आश्रय के रूप में द्रव्य सामान्य की कल्पना करते हैं। बर्कले ने बताया कि ये अमूर्त या काल्पनिक विज्ञान असंभव है। हम इंद्रियों द्वारा विशेषों का ही ज्ञान कर सकते हैं, सामान्य का नहीं। सामान्य मनुष्य की कल्पना करते ही किसी मनुष्य विशेष की आकृति मस्तिष्क में आती है। काल्पनिक विज्ञान वदतो व्याघात है। सारे विज्ञान वास्तविक होते हैं। ज्ञान का विषय सदा संवेदन या स्वसंवेदन होता है और यह एक विशेष और वास्तविक विज्ञान होता है। यह ध्यान देने की बात है कि बर्कले सामान्य का खंडन नहीं करते। सामान्य और सार्वभौम विज्ञानों की सत्ता उन्हें मान्य है। उनका कथन यह है कि ये सामान्य विज्ञान इंद्रिय अनुभव से नहीं आते और न इनको अमूर्त या काल्पनिक विज्ञान कहा जा सकता है। अतः इन तथाकथित अमूर्त विज्ञानों के आधार पर भी बाह्य द्रव्यों की सत्ता नहीं मानी जा सकती। बर्कले ने यह सिद्ध किया कि तथाकथित बाह्य जड़ पदार्थ का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं। हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष होता है केवल गुणों का, बाह्य पदार्थ का नहीं। गुणों के अधिष्ठान के रूप में हम बाह्य पदार्थ का अनुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुण वास्तव में संवेदन मात्र है और इसीलिए आत्मा पर निर्भर है, बाह्य पदार्थ पर नहीं। वे आत्मानिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। यहाँ एक शंका और हो सकती है। भले ही संवेदन आत्मा में रहे, किंतु उन संवेदनों को आत्मा में उत्पन्न करने की शक्ति तो बाह्य पदार्थ में ही माननी पड़ेगी। बाह्य पदार्थ को इन संवेदनों की उत्पत्ति का कारण मानना पड़ेगा। यदि मेज वस्तुतः न हो तो आत्मा में उसका संवेदन भी उत्पन्न नहीं हो सकता। हम बहुत से विज्ञानों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु बाह्य पदार्थों के अभाव में उनके संवेदन प्राप्त नहीं कर सकते। फिर यदि बाह्य पदार्थ हमारे विज्ञान मात्र हों तो वे सबको लगभग एक ही रूप में क्यों प्रतीत होते हैं? यह तो स्पष्ट ही है कि जिन संवेदनों को इंद्रियां बाह्य पदार्थों से ग्रहण करती हैं, उन संवेदनों को हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः बाह्य पदार्थों की सत्ता माननी पड़ेगी। बर्कले का उत्तर है कि यह अनावश्यक और भ्रमपूर्ण विचार है। यह सत्य है कि इन इंद्रिय संवेदनों को हमारी आत्मा स्वतः उत्पन्न नहीं कर सकती, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इन संवेदनों के जनक तथाकथित बाह्य जड़ पदार्थ हैं। पृष्ठ संख्या 148। जो जड़ है, जो असक्त है, जो न दृष्टा है न दृश्य है, जो न ज्ञाता है न ज्ञेय है, वह तथाकथित बाह्य पदार्थ हमारी चेतन आत्मा पर कैसे अपने गुणों की, जो उसमें विद्यमान ही नहीं है, छाप अंकित कर सकती है? विज्ञानों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य जड़ में नहीं हो सकता। अतः इन विज्ञानों की उत्पत्ति का कारण चेतन आत्मा को ही मानना पड़ेगा। और चूंकि हमारी आत्मा इंद्रिय संवेदनों को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए इनकी उत्पत्ति का कारण परमात्मा को मानना चाहिए। ईश्वर ही इन इंद्रिय संवेदन रूपी विज्ञानों को हमारी आत्मा में उत्पन्न करते हैं। यह सामर्थ्य तथाकथित जड़ द्रव्यों का नहीं हो सकता। अतः सिद्ध हुआ कि तथाकथित बाह्य जड़ पदार्थों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। लाख का यह अज्ञेय बाह्य द्रव्य जिसके विषय में वे कहते हैं कि यह कुछ है किंतु मैं नहीं जानता क्या है, अर्थात समथिंग आई नो नॉट व्हाट, यह मूर्खतापूर्ण चेतना शून्य जड़ या स्टूपिड थॉटलेस सम व्हाट वास्तव में शून्य या नथिंग है। जड़ तत्व का खंडन करके बर्कले अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह प्रसिद्ध सिद्धांत है, सत्ता अनुभव मूलक है या इससे इष्ट परसिपी, अर्थात उसी की सत्ता मानी जा सकती है जो अनुभव करता है या अनुभव किया जाता है। अनुभव करता है आत्मा और अनुभव के विषय है विज्ञान। अतः आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है। ईश्वर भी आत्मस्वरूप है, वे परमात्मा हैं। विज्ञान अजड़ है, वे तथाकथित बाह्य पदार्थों के प्रतिबिंब या प्रतिकृति नहीं हैं, वे आत्मनिष्ठ हैं, बाह्य वस्तु निष्ठ नहीं हैं। विज्ञान बाह्य कोई विषय नहीं है, जड़ तत्व की कोई सत्ता नहीं। कुछ विज्ञानों को आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है और कुछ को ईश्वर। विज्ञान के दो रूप हैं, संवेदन और स्वसंवेदन। संवेदनों की सृष्टि ईश्वर करते हैं, स्वसंवेदनों की सृष्टि आत्मा करती है। लाइबनित्ज ने कहा था, चिदड़ू और उसके प्रतिबिंबों के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं। बर्कले ने कहा, आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं। हमारे विज्ञान ही सत्य वस्तुएं हैं। बर्कले की प्रसिद्ध उक्ति है, मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बनाता, मैं विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूँ। विज्ञान ही सत्य विषय है और उनकी सत्ता आत्मा के बाहर नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ जीवात्मा और परमात्मा दोनों है। बहुत से विज्ञान मेरी आत्मा के बाहर हैं किंतु परमात्मा के बाहर नहीं। संसार के समस्त दृश्य पदार्थ, घट पट मेज कुर्सी पेड़ पौधे सूरज चांद तारे आदि सब हमारे ही विज्ञान हैं, सब आत्मा में विद्यमान हैं। पृष्ठ संख्या 149। प्रतीति का विषय होना या अनुभव किया जाना अस्तित्व का द्योतक है। मान लीजिए मेरे सामने मेज रखी है, मेज कोई बाह्य जड़ पदार्थ नहीं है, वह विज्ञान मात्र है और आत्मा की सृष्टि है। जब तक मैं मेज को देख रहा हूँ उसका अस्तित्व है, किंतु जब मैं कमरे के बाहर चला जाऊँगा तो क्या मेज की सत्ता नहीं रहेगी? बर्कले का उत्तर है, अवश्य रहेगी। प्रकृति का विषय होना सत्ता का सूचक है। इस वाक्य के अनुसार प्रकृति का विषय बनने का सामर्थ्य भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यदि मैं कमरे में न रहूं तो भी मेज की सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि पहला, यदि मैं कमरे में होता तो मुझे मेज की प्रतीति हो सकती थी, अर्थात मेज में मेरी प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य विद्यमान है। दूसरा है, अन्य कोई व्यक्ति उस मेज की प्रतीति कर रहा हो। तीसरा है, ईश्वर को उस मेज की प्रतीति सदा हो रही है। अतः बर्कले के अनुसार विज्ञानों की सत्ता बनी रहती है, क्योंकि उनमें प्रतीति के विषय बनने का सामर्थ्य है, क्योंकि कोई न कोई जीव उनकी प्रतीति कर रहा है, और क्योंकि ईश्वर को उनकी प्रतीति सदा हुआ करती है। बर्कले ने जो विज्ञान शब्द का अर्थ किया, अर्थात अनुभव का विषय, उसे न समझकर और उसे साधारण प्रचलित अर्थ में बाह्य वस्तुओं द्वारा जनित संस्कार या मानसिक कल्पना मात्र मानकर लोगों ने बर्कले पर व्यर्थ के दोष थोपे हैं। बर्कले ने स्वयं इस सिद्धांत पर किए जाने वाले आक्षेपों को पूर्व पक्ष बनाकर उनका उत्तर दे दिया है। इस प्रकार के कुछ आक्षेप ये हैं, यदि बाह्य पदार्थ केवल हमारे मानसिक विज्ञान हैं, तो क्या हम विज्ञानों को खाते हैं, विज्ञानों को पीते हैं और विज्ञानों को पहनते हैं? फिर तो मैं जल पी रहा हूँ। इस वाक्य का अर्थ हुआ, मेरा विज्ञान जल के विज्ञान को पी रहा है। बर्कले कृत बाह्य पदार्थों का खंडन सुनकर सुनते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने जोर से जमीन पर पैर पटका। उनका तात्पर्य यह बताकर कि यदि वस्तुएं नहीं हैं तो पैर जमीन पर पटकने से आवाज क्यों निकली? इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत को पैर के नीचे कुचल देने का था। बायरन की उक्ति है, यदि जड़ तत्व नहीं है और बर्कले ने इसे सिद्ध किया है, तो उनके कथन में कोई तत्व नहीं। ये सब आक्षेप निर्मूल हैं, क्योंकि बर्कले ने विज्ञान का प्रयोग प्रतीति विषय के अर्थ में किया है, काल्पनिक विचार के अर्थ में नहीं। असली दार्शनिक आक्षेप जो इस सिद्धांत पर प्रायः किया जाता है वह यह है, संख्या 150, यह सिद्धांत बर्कले की दृष्टि सृष्टिवादी या जीवन सृष्ट विज्ञानवादी या सब्जेक्टिव आइडियालिस्ट और अहमवादी या सोलिप्सिस्ट बना देता है। इसके अनुसार जीवात्मा ही इंद्रिय संवेदन रूप विज्ञानों द्वारा प्रतीति के समय जगत की सृष्टि करता है। संपूर्ण जगत जीव की सृष्टि है, और जब तक प्रतीति है तब तक ही जगत है। इस सिद्धांत के अनुसार मैं और मेरे विज्ञान के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं। इसके अनुसार ज्ञान को इंद्रिय संवेदनों से जकड़ दिया गया है, क्योंकि इंद्रिय संवेदनों के अतिरिक्त मेरे मन की कल्पनाओं को छोड़कर और कोई अनुभव का विषय नहीं, किंतु ये आक्षेप भी निर्मूल है। बर्कले का अभिप्राय न दृष्ट सृष्टिवादी है और न अहमवाद। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जीवात्मा जगत की सृष्टि नहीं करता, जगत अर्थात विज्ञान जगत की सृष्टि, उन विज्ञानों की सृष्टि जो इंद्रिय संवेदन के रूप में हमारी आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, ईश्वर करते हैं। उनका तात्पर्य इतना ही है कि जगत आत्मबाह्य नहीं है, जीवात्मा के बाहर तो है किंतु परमात्मा के बाहर नहीं। मैं और मेरे विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य जीव और उनके विज्ञान भी हैं और ईश्वर तथा उनके विज्ञान भी। सत्ता अनुभव मूलक है। इस सिद्धांत में अनुभव शब्द से केवल इंद्रिय अनुभव का ही तात्पर्य नहीं है, अपितु इसमें अंतर्बोध और निर्विकल्प स्वानुभूति का भी समावेश हो जाता है। वास्तविक सत्ता ईश्वरी ज्ञान की है, उसके आगे इंद्रिय अनुभव तुच्छ है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बर्कले ने अपने इस सूत्र को कि सत्ता अनुभव मूलक है, इसे इष्ट पर्सिपी बाद में इस सूत्र में बदल दिया। सत्ता अंतर्बोध मूलक है, इससे इष्ट कॉन्सिपी। प्रायः आलोचक इन बातों को भूल जाते हैं और बर्कले पर मिथ्या दोषारोपण करने में नहीं हिचकिचाते हैं। बर्कले के अनुसार जगत की सत्ता हमारे इंद्रिय अनुभव पर आश्रित न होकर ईश्वर के ज्ञान पर आश्रित है।